जब जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द की बात आई और जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम भिजवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब अलैहि सलाम के मशवरे के बाद मंसूर कर लिया। तो हज़रत अबू तालिब अलैहि सलाम अपने रिश्तेदारों के हमरा हज़रत ख़दीजा के चचा के पास गए। जनाब ख़दीजा ने फरमाया कि मेरा महर मेरे माल ही में से है और हक़ महर की वो खुद ज़ामिन हुई। कुरैश में से एक शख्स ने कहा कि ताज्जुब है, औरतें मर्दों के लिए हक़ महर की ज़ामिन हो रही हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये सुनकर गुस्सा आ गया। जब उनको गुस्सा आता तो कुरैश उनके दबदबे से खौफ खाते। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर शौहर मेरे भतीजे की तरह हो तो औरतें गिरा कीमत ज़्यादा महर देकर उन्हें हासिल करें, और अगर तुम जैसे हो तो उनसे ज़्यादा हक़ महर का मुतालबा किया जाता है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह पढ़ा, जिसमें हज़रत अल्लाह की हमदो सना करते हुए कहते हैं कि तमाम हमदो सना उस खुदा के लिए है जिसने हमको औलाद इब्राहिम और ज़ुर्रियत इस्माइल करार दिया और हमें अपने घर का निगेबान और अपने हरम का पासबान बनाया और इसे हमारे लिए हज का मकाम और जाए अमन करार दिया और हमें लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिस किसी से इनका मवाजना किया जाएगा तो शरफ़ व नजाबत अक्ल व फजीलत में इनका पल्ला भारी रहेगा। अगरचे इनके पास माल की कमी है तो माल दुनिया एक ढलती हुई छांव है और वो साए की तरह है जो जल्दी पलट जाता है। खुदा की कसम, इनका मुस्तकबिल बाअज़मत और इनसे एक अजीम खबर नबाए अजीम का ज़हूर होगा। इस मुख्तसर खुतबे से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अकायद और नज़रियात और नबी के मुतालिक उनके ख़यालात का बड़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। खुतबे की इब्तिदा अल्लाह की हमद व सना से की है, जिससे उनके तौहीद परस्त होने पर रोशनी पड़ती है। अल्लाह की हमद व सना के बाद ज़ुर्रियत इब्राहिम व इस्माइल से अपनी वाबस्तगी का इजहार करके खाना काबा की निगरानी, हरम की पासवानी और अवामुन नास पर हुकुमरानी का जिक्र है। इससे ना सिर्फ ये वाजे होता है कि वो नस्ल इब्राहिम में से होने की बिना पर इन मनसबों पर फायज़ होते चले आ रहे हैं, बल्कि इस अमर की निशानदही भी होती है कि वो हरम के ओहदों के अलावा उनकी तालीमात के भी विरसादार थे। अगर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से लातअल्लुक़ होते नाऊज़ु बिल्लाह, तो इस नस्बत के फ़ख्र का कोई मोरद नहीं था। और आखिर में नबा अज़ीम के अल्फाज से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शा मुस्तकबिल अज़ीम उशान नबूवत की तरफ इशारा किया कि वह अनकरीब आसमान हिदायत पर नैयर दरख्शा बनकर चमकेंगे और इस्लामी इलाही तालीमात की रोशनी में भटकी हुई इंसानियत को सीधी राह दिखाएंगे। अलमुख्तसर ये कि जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अंजाम पा गई। एक साल मक्के में सख्त कहत पड़ गया। रसूल अल्लाह ने अपने चचा अब्बास को मशवरा दिया कि हम में से हर एक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद को ले लें ताकि उनका माली बोझ कम हो जाए। चुनाचे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास गए, उनसे बयान किया, वो भी राज़ी हो गए। तो फिर जनाब जाफ़र को हज़रत अबू तालिब के भाई अब्बास ने ले लिया और मौलाए कायनात को रसूल अल्लाह ने अपनी तरबियत और किफ़ालत में ले लिया और मौलाए कायनात नबी करीम के घर में रहकर परवरिश पाने लगे और नबी करीम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते थे। फिर वो वक्त आ गया जिसका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था, वो सुबह जिसका हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे तबस्सुम आ गया, निगाहों के सामने वो दिन आ गया था जिसका इंतज़ार कर रहे थे। नबी मबऊस बा रिसालत हुए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नबी करीम से फ़रमाया, भतीजे जाओ ऐलान करो, तुम्हारी मंजिल बुलंद, तुम्हारी जमात मोहकम, तुम्हारा नसब अरफा वाला है। खुदा की कसम, अगर किसी ज़बान से एक नासज़ा कलमा भी निकला तो फिर तलवारें निकल आएंगी। और दावत ज़ुलहिजा के मौके पर फरमाया था कि खुदा की कसम, मैं ता हयात इनको बचाता रहूँगा और इसके बाद भतीजे से ख़िताब किया कि मेरे सरदार उठिए, जो चाहते हैं कहिए, अपना पैगाम पहुंचाइए, आप सादिक भी हैं और सिद्दीक भी हैं। जनाब अल्लामा अब्दुल्लाह अल-ग़नीसी कहते हैं कि सरदार का लफ्ज़ कौन इस्तेमाल कर रहे हैं और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब अबू तालिब ने नबी को पाला है, किफ़ालत की है, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन रिसालत का हक़ इन तमाम हुकूक़ पर ग़ालिब आ गया। अब नबी सिराज मुनीर हैं जिससे इंसानियत भूली हुई राहों को दरियाफ़्त करेगी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि ये भतीजा रसूल है तो मेरे लिए वाजिबुल अताअत सरदार है। जब दावत ज़ुलशीरा में नबी ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे, और जो मेरी मदद करेगा वो मेरा खलीफा, वज़ीर और वसी होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कमसिन फ़र्जंद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह से अर्ज़ की कि मैं इस काम में आपकी मदद करूँगा। नबी ने फरमाया, ये तुम्हारे दरमियान मेरा भाई, वसी और जानशीन है, इसकी बातों को सुनो और अताअत करो। कुफ्फार हंसते हुए उठे और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि लो, इन्होंने तुम पर तुम्हारे बेटे की अताअत भी वाजिब कर दी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो कुछ करेंगे खैर ही करेंगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने फरमाया, अपने भाई के तरीक़े को इख्तियार करो, वो हर दूर और करीब सख्ती से बचाएंगे। ऐ अली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत में इत्मीनान और सुकून है, लिहाजा उन्हीं के साथ रहा करो। गोया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में दीन रसूल का इत्तेबा करना दुनिया और आखरत की सलामती का ज़ामिन है। हज़रत अबू तालिब चचा की हैसियत से कराबतदारी की पासदारी कर रहे थे, जिसका तसव्वुर एक चचा के दिल में यतीम भतीजे के लिए होता है, लेकिन इसके साथ ही वो दीन खुदा की तरवीज और नबी करीम के मिशन को कामयाब बना रहे थे और पूरी तरह से उस तहरीक से मुत्तफिक थे जिसे नबी करीम चला रहे थे। हज़रत अबू तालिब को दीन खुदा से ऐसी मोहब्बत थी जिस तरह रासिखुल अकीदा मुसलमान को होती है। और जब परवरदिगार आलम के हुक्म से रसूल अल्लाह ने बुत परस्ती की मजम्मत की तो कुरैश को सख्त बुरा लगा। वो एक वफ्द बनाकर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि हम आपके भतीजे की शिकायत करने आए हैं, आप अपने भतीजे को इस तबलीग से रोकें। जब उनका इसरार बढ़ा तो हज़रत अबू तालिब ने यह पैगाम नबी तक पहुँचाया और नबी ने जवाब में फरमाया, अगर ये मेरे दाहिने हाथ पे सूरज और बाएँ पे चांद रख दें, बाएँ हाथ पे चांद भी रख दें, तब भी मैं इस तबलीग को नहीं छोड़ूंगा। उस पर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कुरैश वालों, खुदा की कसम मेरे भतीजे ने गलत बात नहीं कही है। अब फिर शफ़क़त और रिक़त में डूबे हुए अल्फाज में नबी से फरमाया, बेटा जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें इनके हवाले नहीं कर सकता। और जोश मोहब्बत में ये अशआर पढ़ना शुरू किए, खुदा की कसम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तुम नहायत इत्मीनान के साथ अपने अमर का ऐलान करो, तुम्हारी दावत सादिक, तुम खुद नासेह कामिल और अमीन मोतमिद यानी काबिल एतमाद हो। मैं बखूबी जानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम अदियान से बेहतर है। इस आखिरी शेर में बता दिया कि मेरी बसीरत तमाम अदियान का जायज़ा ले रही है और मैं देख रहा हूँ कि आलम के बेशुमार दीन में हुजूर का दीन सबसे बेहतर है। रसूल अल्लाह ने तबलीग जारी रखी। मुशरिकीन कुरैश एक मरतबा फिर हज़रत अबू तालिब के पास आए। इस मरतबा वो कुरैश के खूबसूरत और ज़हीन जवान अम्मारा को भी अपने साथ लाए और उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा कि हम अपने साथ कुरैश का खूबसूरत जवान लाए हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की जगह इसे अपने पास रख लें और उन्हें हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें और कुरैश से ही झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनकी इस अहमकाना पेशकश के जवाब में फ़रमाया, तुमने अजीब फ़ैसला किया, मैं तुम्हारे बेटे को पालूँ और तुम मेरे बेटे को कत्ल करो, मैं तुम्हारी पेशकश मुस्तरद करता हूँ। कुफ़ार कुरैश की इस बात से उनकी पस्त ज़हनियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और नबी करीम से उनकी दुश्मनी को भी समझा जा सकता है। और ये अमर गौर तलब है कि ऐसे जाहिलों को समझाना, उनके इरादों को नाकाम बनाना कितना दुश्वार काम था, और इन दुश्वारियों के दूर करने में हज़रत अबू तालिब के अलावा तारीख़ किसी और का नाम बताने से कासिर है। कुरैश ने अगरचे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक ज़रिया, वसीला, वास्ता बनाया हुआ था, मगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम किसी मौके पर भी कुरैश के मसलक की तायीद करते नज़र नहीं आए। अगर नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ़ार कुरैश के नज़रियात के हमनवा होते तो जहाँ वो नबी को कुरैश का पैगाम पहुँचाते थे, वहाँ ये भी कह सकते थे कि आप उनके मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ ना कहें, बुतों की मजम्मत ना करें, क्योंकि मैं भी उन्हीं के मज़हब और आइन पर हूँ। मगर तारीख़ ये बताने से कासिर है कि हज़रत अबू तालिब ने कभी कुफ्फारे कुरैश का साथ दिया हो, बल्कि आप सिर्फ पैगाम पहुंचा देते थे और जो कुछ कहते थे वो कुरैश के ख़िलाफ़ होता था। लिहाजा कुरैश समझ गए थे, कुफ्फारे कुरैश समझ गए थे कि इनकी हमदर्दियाँ अपने भतीजे के साथ हैं, इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन नबी करीम की नुसरत व हिमायत से दस्तबरदार हों, उनका साथ छोड़ें, ये नहीं हो सकता। लिहाजा इनसे मज़ीद कुछ कहना बेसूद है। कुफ्फारे मक्का ने नबी के ख़िलाफ़ महाज़ क़ायम करके उन्हें अज़ियत पहुँचाना शुरू कर दी। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुनासिब ख़याल किया कि कुरैश के हर मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर दें। बनी हाशिम के बहादुरों को इस कार्य खैर की, अमर खैर की दावत दी, जिसे सिवाय अबू लहब के सबने कबूल कर लिया। जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के जवानों की शान देखते तो चेहरे पर तबस्सुम के आसार नमूदार हो जाते। इसके साथ ही उन बहादुरों के शुक्रिया के लिए और उनकी मदह के लिए चंद अशआर कहे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़्यादातर गुफ्तगू अशआर की सूरत में है। अशआर की सूरत में फरमाया कि अगर कुरैश में कोई बात काबिल फ़ख्र है तो अब्दे मनाफ है, अगर अब्दे मनाफ में कोई बात काबिल फ़ख्र है तो वो बनी हाशिम, और अगर बनी हाशिम में कोई बात फ़ख्र की बात है, काबिल फ़ख्र है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरैश ने हम पर हर तरह के, हर किस्म के हमले किए, हमने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, हम फजीलतों का तहफ्फुज़ करते हैं। खिजां रसीदा शाखों में बहार हमसे आती है, जड़ों की नशोनुमा हमारे करम से होती है। एक मरतबा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी करीम पे नज़र करते हैं, देखा दाईं जानिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम है और बाईं जानिब जगह खाली है। फ़ौरन हज़रत जाफ़र को आवाज़ दी, बेटा जाओ और बाईं जानिब खड़े हो जाओ, और फिर कुछ अशआर पढ़ना शुरू किए जिनमें अपने दोनों फ़र्जंदों की मदह और उनके लिए दस्तूर हयात बयान किया। फरमाते हैं अशआर की सूरत में, अली और जाफ़र मसाइब ज़माना और शदाइद में मेरे काबिल एतमाद हैं। मेरे बेटों, अपने भाई की नुसरत करो, ये मेरे हकीकी भाई के फ़र्जंद हैं और उनकी यादगार हैं। खुदा की कसम, ना मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ और ना मेरी औलाद में से कोई शरीफ इनका साथ छोड़ेगा। फिर एक वक्त वो आता है जब अपने भाई हमजा को आवाज़ देकर फरमाते हैं, भाई दीन खुदा का इजहार करो और इस सिलसिले में मसाइब बर्दाश्त करो, साहिब शरीयत की हिफाजत में अज़्म मोहकम और इरादा मुस्तहकम से काम लो। कुरैश की धमकियों पर हज़रत अबू तालिब ने नबी की हिमायत का ऐलान किया और कबीला बनी हाशिम के लोगों को इस बात पर आमादा किया कि अगर उनके भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा तो कुफ्फारे कुरैश बनी हाशिम के इंतकाम से नहीं बच सकते। एक कसीदे में आपने कहा, अंता नबी मोहम्मद, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बुज़ुर्ग रोशन पेशानी और सरदार हैं, आपके बुज़ुर्ग भी तैयब व ताहिर बा अज़मत थे, मैंने आपको सादिक़ुल क़ौल पाया है, आज ही से नहीं बल्कि बचपन से सच्चा पाया है। अल्लामा अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने इस कसीदे के शुरू में नबूवत का वो खुला ऐलान किया है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। क्या फ़र्क है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने में और अंता नबी कहने में, अंता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? यानी अगर ये कहा जाए कि बेशक आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या ये कहा जाए कि बेशक आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो क्या फ़र्क है? ये नबूवत का एतराफ़ ही तो है, खुला ऐलान ही तो है। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद इन अशआर से पहले उन्होंने दो शेर और नकल किए और ये कहा कि इन अशआर को, यानी दो शेर जो उन्होंने नकल किए हैं, इन दो अशआर को हज़रत रसूल अल्लाह का दिल बढ़ाने और उन्हें क़ुव्वत पहुँचाने के लिए हज़रत अबू तालिब ने कहा था। और वो दो शेर ये हैं कि आप अपनी तबलीग में किसी बात का ख्याल ना करें और ना किसी हाथ का, मैं आपके साथ हूँ, अगर फ़ायदा है तो आप कर, अगर क़ुरबानी की ज़रूरत है तो मेरी जान के लिए। हज़रत अबू तालिब की नुसरत का ताल्लुक़ सिर्फ़ रसूल अल्लाह की ज़ात मुबारक से नहीं था, बल्कि आप रिसालत की इमदाद व हिमायत कर रहे थे। आप हर उस शख्स की इमदाद करेंगे जो इस रिसालत का एतराफ़ करे। आपने मुसलमानों की इमदाद की, चाहने वालों की जान बचाई। हज़रत अबू तालिब का जिहाद फ़क़त रसूल अल्लाह और बेकस मुसलमानों के दिफा में ही मुनासिर ना था, बल्कि उनकी मुजाहदात का एक पहलू और भी था। वो इस्लाम के अजीम मुबल्लिग़ और पैगंबर के मिशन के एक बड़े कारकुन थे। आप कभी तो नबी की शख्सियत को उजागर करते, कभी इस्लाम की अजमत जाहिर करते, कभी कुफ्फार को इस्लाम कबूल ना करने के नतीजे से डराते, और इन बातों को वो अशआर में नज़म फरमाते थे ताकि आइंदा नस्लें भी इनसे आशना रहें। शेख़ कुरैश हज़रत अबू तालिब रईस मक्का हर हर कदम पर रसूल अल्लाह की हिमायत करते रहे और अपने कसाइद से कसीदों से कुफ्फार कुरैश को रुसवा करते रहे, और हर बाज़ अमीर शख्स से रसूल अल्लाह की मदद का मुतालबा भी करते रहे। उमूमन उनके कसाइद का मफहूम कुछ इस तरह होता था, अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी बयान करते हैं कि मफहूम कुछ इस तरह होता था कि नहीं खुदा की कसम किसी का दस्ते जफाकार मेरे भतीजे तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हिफाजत के लिए बनी हाशिम के शेर दिल जवान तलवारें बेनियाम किए खड़े रहते हैं, और जिस तरह शेर शिकार पर हमला करता है इस तरह से बनी हाशिम के जवान दुश्मन की सफ़ों को तहोबाला कर देते हैं, और अगर किसी ने ये हरकत करने की कोशिश की तो फिर कई औरतों को बेवा होना पड़ेगा। हज़रत अबू तालिब ने हिमायत रसूल में जो कसाइद कहे हैं उनमें से एक कसीदा 94 बैत पर मुश्तमिल है। जब उस हज़रत जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन ने ईमान कबूल कर लिया और उन्हें अजियतें देना शुरू की गई और जनाब अबू तालिब को इत्तला मिली, तो जनाब अबू तालिब ने कुछ अशआर पढ़े कि ऐ उस्मान, क्या इस नाकाबिले एतमाद ज़माने के ख्यालात से आप रंजीदा हो गए हैं? ऐ कुरैश वालों, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि हम उस्मान के साथ हैं और हम पनाह लेने वालों की नुसरत करते हैं? या तो तुम इस किताब अजीब पर ईमान ले आओ जो हज़रत मूसा और हज़रत यूनुस जैसे नबी पे नाजिल हुई है। अल्लामा अब्दुल्लाह अल-ग़नीज़ी कहते हैं कि कोई मुझे बताए कि इस आखिरी शेर में किताब अजीब से क्या मुराद है जिसका लाने वाला हज़रत मूसा और हज़रत यूनुस जैसा नबी है? क्या ये कुरान के अलावा कोई और किताब है? क्या इसे ईमान बिल कुरान के अलावा कोई और नाम दिया जा सकता है? इस शेर से तो मालूम होता है कि हज़रत अबू तालिब साबका अदियान पर एक कशादा तफसीली इल्म रखते थे, और इसीलिए आपने इस किताब को अजीब कहा और नबूवत को गुज़िश्ता नबूवतों का तसलसल ताबीर किया। कुरान को अजीब कहना, इसकी मिसाल खुद कुरान में मौजूद है, सूरह जिन में फ़क़ालू इन्ना समेना कुरआनन अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की राह दिखाता है। जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुनकर कहा कि हमने अजीब कुरान सुना जो भलाई की राह दिखाता है। जब कुफ्फारे कुरैश हर तरफ से मायूस हो गए और रसूल अल्लाह के पैरोकारों पर उन्होंने हद से ज़्यादा मजालिम किए, तो नबी ने अपने पैरोकारों को हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया, और फिर आपने जनाब जाफ़र इब्ने अबी तालिब को उनकी सरपरस्ती के लिए रवाना किया। पैगंबर तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम की हिमायत में कुरैश की तरफ से जानी नुकसान से महफूज थे, लेकिन दूसरे मुसलमानों की बेपनाह तकालीफ देखकर वक्ती तौर पर राय हल ये निकाली गई, मुसलमानों को समझाए कि मुल्क हबशा हिजरत कर जाएं, वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद और सरजमीन पुरअमन है। जब मुसलमान हबशा में अमन व सलामती के साथ रहने लगे और कुरैश को कुफ्फार को ख़तरे का एहसास हुआ, उन्होंने अपना नुमाइंदा नजाशी के दरबार में भेजा ताकि वो बादशाह से मुतालबा करे कि महाजरीन को उनके हवाले कर दिया जाए। नजाशी ने कुरैश के नुमाइंदे की मौजूदगी में जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और उन्होंने इस्लाम की बहुत अच्छी तर्जुमानी की, महाजरीन का मौक़िफ़ बयान किया, जिससे नजाशी बहुत मुतासर हुआ और कुरैश के नुमाइंदे को मायूस होकर जाना पड़ा। नजाशी सदाकत इस्लाम से बहुत मुतासर हुआ। शेख मक्का जनाब अबू तालिब ने इन अशआर में बादशाह हबशा नजाशी को, जो कि ईसाई था, ख़िताब करते हुए इस्लाम की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ बेहतरीन इंसान, तुझे मालूम होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत मूसा और हज़रत ईसा इब्ने मरियम के मददगार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही हिदायत लाए हैं जैसी कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा लाए थे। ये पैगंबर अल्लाह के हुक्म से हिदायत करते हैं, लोगों को बुराई से बचाते हैं। तुम अपनी किताब इंजील में सही तरह से इस जिक्र की तिलावत करते हो जो कि कोई ख्याली बात नहीं है, और जब हमारा कोई गिरोह तुम्हारी फजीलत की उम्मीद रख कर तुम्हारे पास आता है तो वो एहतराम व इकराम हासिल करके वापस पलटता है। इसमें दावत इस्लाम के साथ नजाशी की भी तारीफ़ की गई है। حضرت ابو طالب مسلسل اپنے اشعار سے رسول اللہ کی صداقت کا اظہار کرتے رہتے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہتے۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں، کچھ اشعار اس طرح سے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، کہ خدا کی قسم جب تک میں خاک میں دفن نہ ہو جاؤں کفار کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ نے وہ دین پیش کیا ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ تمام ادیان سے بہتر ہے۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پایا ہے جن کا نام تورات میں مذکور ہے۔ جب قریش کے سرداروں کو، کفار کو حضرت ابو طالب سے بات کرنے پہ کوئی نتیجہ نہ ملا اور حبشہ سے مہاجرین کے پلٹانے میں بھی ناکام رہے، اور دوسری طرف بڑی اور اہم شخصیات اسلام قبول کرنے لگیں، مختلف قبائل سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، تو قریش نے، کفار قریش نے منصوبہ بنایا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے اجتماعی اور اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کفار قریش نے سمجھ لیا کہ شیخ مکہ ان کی ایک نہیں سنتے، ہر وقت اپنے بھتیجے اور دین اسلام کی حمایت پہ کمر بستہ رہتے ہیں، تو انہوں نے بغاوت کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک دستاویز لکھی جس میں انہوں نے رسول اللہ کی حمایت کرنے والوں سے معاشی اور معاشرتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں اور نبی کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشورے سے بنی ہاشم کے تمام افراد شیب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ اس اقتصادی محاصرے نے سخت اثرات مرتب کیے۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس محاصرے کے دوران جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی دولت محصورین پر خرچ کرتی رہیں، جو محاصرے میں جو لوگ تھے ان پر خرچ کرتی رہیں، اور اس عرصے میں چھپ چھپا کر بنی ہاشم کو غلہ ملا کرتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات کو رات کی تاریکی میں مکے بھیجتے تاکہ وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء لا سکے۔ ابن ابی الحدید کے مطابق حضرت علی علیہ السلام رات کی تاریکی میں چپکے سے گھاٹی سے نکلتے تھے، لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے اس جگہ پہنچتے جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں بھیجا ہوتا تھا، اور وہاں سے گندم اور آٹے کی بوریاں اپنے دوش مبارک پہ اٹھا کر لاتے۔ محاصرے کے دوران کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا۔ قریش اعلان کر چکے تھے کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان واحد راہ حل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت فکر مند تھے، شیب ابی طالب میں پناہ لی تھی تاکہ نبی کی حفاظت کرنا آسان رہے۔ علامہ عبداللہ الخنیزی کی کتاب ابو طالب مومن قریش میں ہے کہ تاریخ میں بنی ہاشم کے مردوں کی تعداد 40 نقل ہوئی جنہیں ابو طالب علیہ السلام نے نبی کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضرت ابو طالب ہر شب نبی سے کہتے کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنی جگہ بدل دیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی جگہ پر اپنے فرزند حضرت علی کو لٹا دیتے تاکہ اگر قریش حملہ کرے تو نبی حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ جب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کو دیکھتے تو روتے ہوئے فرماتے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کی طرف سے رات کا زیادہ حصہ ایک جگہ پر گزارنے سے خائف رہتے، یہی وجہ ہے کہ وہ رات میں نبی کی جگہ مولا علی کو سلا دیتے۔ اگر کوئی شب خون مارے تو نبی بچ جائیں، چاہے ان کے فرزند کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن نبی تک کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اس محاصرے کے دوران اور اس کے علاوہ بھی وہ ایسا ہی کرتے رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کی زندگی کے لیے خطرے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ رسول کے لیے اپنی موت کو خوشی سے قبول کرنے پر تیار تھے۔ ایک روز والد سے کہا کہ میں قتل ہو جانے والا ہوں، حضرت ابو طالب نے اشعار کے ذریعے فرمایا، جو زندہ ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ وہ مشکل ہوتا ہے، اپنے حبیب اور حبیب کے بیٹے پہ فدا ہونے کے لیے اگر تم کو قتل کر دیا جائے تو یہ شرافت ہوگی۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ اور ان کے پیغام پر گہرا ایمان رکھتے تھے، اور اس راہ میں ہر شے، حتیٰ اپنے بیٹے کو بھی اس کا فدیہ سمجھتے تھے۔ مولا کائنات نے جواب میں اپنے بابا سے عرض کی، اے والد محترم، آپ مجھے رسول کی نصرت میں صبر کا حکم دے رہے ہیں، باخدا آپ نے جو کچھ کہا وہ دل کی گہرائی سے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ خود میری کوشش اور نصرت دیکھیں اور پھر یقین کریں کہ میں نے آپ کے حکم کی کیسی تعمیل کی ہے۔ मैं अपने लड़कपन और बड़े होकर भी खुदा की राह में रसूल की मदद करता रहूँगा, क्योंकि वो हिदायत करने वाले और काबिल सताइश नबी हैं। शब हिजरत, नबी के बिस्तर पर मौलाए कायनात का सोना पहली दफ़ा नहीं था, वो इससे पहले भी नबी के बिस्तर पे सोते रहे थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हर शय की कुर्बानी दी और कुफ्फार के मुकाबले में खड़े होकर मुहासरे के दौरान अपने चचेरे भाइयों समेत भूख और अजियत झेली है। यहाँ तक कि उस ज़माने में ये लोग अक्सर औकात जड़ी बूटियाँ खाकर गुजारा करते रहे। चुनाचे अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों ने बारहा रसूल की खातिर मौत का सामना किया। वो रसूल से कहा करते थे, बाखुदा ये लोग अपनी जमीयत के साथ आप तक नहीं पहुंच सकते जब तक मैं ज़मीन में दफन ना कर दिया जाऊं। 3 साल के सख्त मुहासरे ने फ़ुक्र फ़ाका में मुब्तिला कर दिया था। इस दौरान शेबे अबी तालिब में कुरैश ने गल्ला पहुंचने में रुकावटें खड़ी कर दी थीं। बनी हाशिम हर तरह के लेन देन से महरूम कर दिए गए, सख्त मुश्किलात में गिरफ्तार हुए। चंद ही महीनों में तंगी हो गई, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। इन मुश्किलात और मसाइब का असर बच्चों और औरतों पर बहुत ज़्यादा था। शेबे अबी तालिब में 3 साल गुजर गए। एक दिन जिब्रील अमीन खिदमत नबी में खुशखबरी थी कि कुरैश के अहदनामे को दीमक खा गई है, बस नाम खुदा बाकी रह गया है। नबी ने यह खबर हज़रत अबू तालिब को सुनाई। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हाशमी अफराद की झुरमट में बाहर निकल कर सहने काबा में तशरीफ़ लाए, कुरैश को मुखातिब किया है, कुरैश वालों मेरे भतीजे ने मुझे खबर दी है कि तुम्हारे अहदनामे को दीमक ने खा लिया है और इसमें नाम खुदा के सिवा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। अगर मेरे भतीजे की बात सच साबित हुई तो तुम्हें मुहासरा ख़त्म करना चाहिए, और अगर इनकी बात नाऊज़ु बिल्ला झूठ साबित हुई तो मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब अहदनामे को खोल कर देखा गया तो सिवाय खुदा के नाम के तमाम अहदनामे को दीमक खा चुकी थी, और यूं नबी करीम की बात उनकी खबर सच साबित हुई। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, आखिर हम किस बात पर महसूर हैं? और काबे का पर्दा थामा, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, खुदाया हमें गलबा इनायत कर, इन लोगों ने हमसे कतए रहम किया, हमारे लिए हराम को हलाल कर लिया, अब तू हमारी नुसरत फरमा। ये सुनना था कि कुरैश के कुछ लोग अहदनामे की मुखालफत पर आमादा हो गए और इस तरह शेबे अबी तालिब से बनी हाशिम बाहर निकले।